अमेरिका इंडिया को खड़ा करना चाह रहा था चाइना के अगेंस्ट, वो उस तरीके से नहीं हुए। और जब ईरान पर पाबंदियां लगाई तो इंडिया ने एक्सेप्शन किया और वो पाबंदियां उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से चलाता है, अपना फायदा देखते हैं। और ये भी मैं कहता चलूं कि इस इवेंट में जो अभी हाल ही में हुआ, इससे पाकिस्तान को भी ये फायदा हुआ है कि इनकी हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ ठीक हो गई है, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से अच्छे हो गए हैं, हमें चाइना के बारे में बिल्कुल जो खदशात थे खत्म हुए। और आपने देखा होगा कि ईरान के वजीर खारजा भी हमारे पास आए और बाद में खैर हिंदुस्तान भी गए, तो इसका हमें फायदा हुआ है। और जो फायदे हैं वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके जो सामीन नाजरीन है वो समझे कि पाकिस्तान किस पोजीशन में है। और मैं क्यों कहता हूं कि अच्छी पोजीशन में है, तीन चार फैक्टर मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात, कश्मीर सिर्फ अब ट्राइलेटरल बात नहीं है, मसला नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान एंड कश्मीरी, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इशू। चाइना इन अ बिग वे हैज बिग स्टेक्स इन कश्मीर एंड चाइना हैज कम वेरी क्लोज टू अस। तो इफ एनीथिंग हैपेंस इन कश्मीर इन दीज डेज, तो ये एक फैक्टर होगा जो जेहन में रखना चाहिए सबको। दूसरी बात, ये जो बीबीसी अभी इंटरव्यू लेने गया था पहलगाम के वाक्य के बाद इंडियन एंड कश्मीर में, तो वहां पर जो कश्मीरियों ने जिस तरीके से इजहार किया अपने ख्यालात का और जज्बात का, उसमें बिल्कुल क्लियरली एंटी इंडियन आर्मी चीज झलक रही थी। और अब अगर पाकिस्तान इन हालात में मकबूजा कश्मीर की तरफ पेशकदमी शुरू करे, मैं मिसाल दे रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं, तो लोग सोचें कि वो जो कश्मीरी है मकबूजा कश्मीर वाले वो किसका साथ देंगे। इसको बात को मैं इधर ही छोड़ता हूं। तीसरी बात यह है कि एवरीबॉडी नोज के दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ओपन और खुली जंग तो हो नहीं सकती, लिमिटेड वॉर होगी, लिमिटेड स्पेस में होगी। गो के अभी वो जो इन्होंने आज ड्रोन भेजे हैं, उन्होंने इसको वाइडन अप करने की कोशिश की है कि इसको फैलाया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर छोटी जगह पर जंग होगी तो पाकिस्तान को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बेशक वो बड़ी फौज है, ज्यादा जहाज है, लेकिन एक छोटी सी जगह में कितने जहाज ले आएंगे, हम भी उतने ला सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है। फिर आपने देखा बांग्लादेश की तरफ से रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ से किस किस्म के बयान आए हैं, आपने देखा कि सिखों की तरफ से किस किस्म के बयान आए हैं, आपने देखा कि अफगानिस्तान ने हमारे साथ जब इंटेलिजेंस शेयरिंग की तो हमने 71 बंदे एक ही रात में मार दिए थे। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और ये सबकी सब पाकिस्तान के हक में जाती हैं। और फिर ये फर्स्ट राउंड ऑफ जो क्लैश है वो पाकिस्तान ने जीत लिया है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अंदाजा लगा लें कि आइंदा क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। जी
बहुत शुक्रिया सर आपका। एक मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक क्लिप जरूर दिखाऊं। ये क्लिप है, ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया, दिस इज अ क्लिप आमिर भाई, द आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्केलिंग की गई है कि किस मुल्क, हालांकि मुल्क बड़े हैं उनके पास पैसा ज्यादा है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए कितना फिर हम रोते हैं, ये कारोबार करते हैं, आप देखिए उनके पास उनको फंड्स कितने मिलते हैं, वो इंडिया की निस्बत कितने कम फंड्स मिलते हैं। अभी इंडिया ने 10-10 गुना कम, अभी 26 राफेल और खरीद रहे हैं वो फ्रांस से, हमारे तो फंड ही कोई नहीं।
बात मैं करता चलूं इससे पहले कि आप मुझे दिखाएं, जब पिछली दफा 2019 में जहाजों का क्रैश हुआ तो इंडिया ने कहा था काश हमारे पास राफेल होते, आज राफेल है तो मेरा ख्याल चंद दिनों के बाद आप सुनेंगी काश हमारे पास F-35 होते जो कि अभी आए नहीं है अमेरिका से। चले बहरहाल चलता रहता है,
क्लिप सुनिएगा। और अगेन ये दिस इज नॉट बाय एनी पाकिस्तानी और इंडियन, and this rating is Jano Saab bhi batayenge, I'm going to play karna.
It's the top 10 best armies in the world.
USA is number 1.
Military,
USA
is not number 1, they're number 2.
That's a lie.
It's not a lie.
Who would you rather take in a fight, USA or China?
It's not China. China's number 4 and Russia's number 5.
Who the hell is number 1?
You'll see, I feel like they have weapons.
North Korea?
Not North Korea, no.
India?
India's number 3.
Who the hell is number 1?
I don't know, I guess we'll find out, right?
Germany?
Germany is number 7.
You might get a sweep of this list until number 1.
France is number 9. France is a powerful country, strong army and military.
Who the hell is number 1?
I don't know. Can you get the other ones?
Is the number 1 one like a trick question?
It's not a trick question, no. It sounds like I'm trying to prank
you. Is it a country?
I'm not. Yes, it's a country.
Mexico?
Mexico! It's not on the top 10.
Japan!
Not in the top 10.
Israel!
Israel is number 8.
There we go, okay.
That's a good one.
I have no idea.
What's the big one in Europe?
United Kingdom!
United Kingdom is number 6.
Okay.
What do you eat for Thanksgiving?
Turkey.
Turkey is number 10.
I don't even like turkey. I'd rather have
Japan.
You need the number one best army in the world.
Saudi Arabia.
Not Saudi Arabia.
Iraq.
Not Iraq.
Syria.
Not Syria.
Afghanistan.
No, what am I doing? I'm taking stuff and I'm...
You're Pakistan?
I'm Pakistan!
Pakistan is a better army than the USA.
According to the top tens, yes.
Ji sir. Kya farmaye?
Ye dekhiye... एक तो होता है जो कम्युनिटी बैलेंस एक रसाला है वो जो निकालता है वो तो देखता है कि आर्मी की तादाद कितनी है आर्मी की ट्रेनिंग कैसी है उनके मतलब इक्विपमेंट कैसा है फिर वो कितना खर्चा वगैरह करते हैं ये जो रेटिंग हुई है ये मेरे ख्याल कारकर्दगी की बुनियाद पर हुई है कि फौज की जो जो हैसियत है जितनी वो मौजूद है उनके ऊपर कितने किस्म के मसायब आए हैं और उन्होंने कैसे उनको हल किया और मेरा ख्याल है कि जो टेररिज्म की वेव छोड़ी गई थी पाकिस्तान के ऊपर ये इस ख्याल से पैदा की गई थी कि पाकिस्तान इसका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और खत्म हो जाएगा लेकिन जिस जो कुर्बानियां हमारी कौम ने और हमारी फौज ने दी उससे ये पता चला कि ये बहुत ही कोई एफिशिएंट फौज है किसी तरीके से काबू में नहीं आती है और अभी आपने देख लिया हिंदुस्तान हमसे 3-4 गुना बड़ी फौज है 5-6 गुना बड़ी एयरफोर्स है 7-8 गुना बड़ी नेवी है और फिर जैसे हम उनके आगे सामने खड़े हैं तो इस लिहाज से कारकर्दगी के लिहाज से फिर जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुकाबले होते हैं ना जैसे फायरिंग का मुकाबला कोई फिजिकल आपस में कंपटीशन तो पाकिस्तान कम्स आउट वेरी एमिनेंटली इन दैट तो मेरे ख्याल उसके ऊपर ये किया है और फिर ये भी देखें कि जैसे आपने कहा कि 8 गुना कम यानी 8 बिलियन डॉलर हमारा खर्चा है सालाना और 80 बिलियन डॉलर जो है वो हिंदुस्तान का खर्चा है और फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास फलानी चीज नहीं है फलानी चीज नहीं है तो अल्लाह ताला कायम रखे नजर ना लगे उसकी मदद जारी रहे हमारे मुल्क के लिए जो लोग दुआ करते हैं उनकी दुआएं जारी रहें और हमारे मुजाहिद इसी तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाते रहे पूरी दुनिया को इंशाल्लाह
आमीन बस मैं सिर्फ इतना कहती हूँ मतलब वही पता ना मैं मरूंगी तभी चुप करूंगी ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है अल्लाह करे कि पाकिस्तान आर्मी अपनी पुराने तमाम के तमाम जख्मों को धो सके और इंशाल्लाह दे आर टैलेंटेड दे कैन डू एनीथिंग शुक्रिया सर
अल्लाह करेगा ऐसे ही हो थैंक यू वेरी मच अस्सलाम
दीजिए आपकी फीडबैक की डेफिनेटली जरूरत है आई एम नॉट बायस आई लव पाकिस्तान दैट्स इट पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी जाती रहेंगी एक मुल्क को जरूरत है एक इदारे की उस इदारे में बहुत से अच्छे लोग भी होंगे और अगर कोई गलत है तो मेरे और आप में से है एंड दैट्स व्हाट कुरान सेज जैसी कौमें वैसे लीडर तो फिर कोशिश करें हम खुद अच्छे हो जाएं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ जी हाँ जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत तब टैप टैप सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता ना कोई हिडन फीस का डर जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड Radio20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर टैप टैप एंड सेंड
शॉपर्स जय तैयार लीसास कॉस्मेटिक्स फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ।
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड।
बस आपको आना है लीसास कॉस्मेटिक्स, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401।
सेल इज फ्रॉम अप्रैल 26 टू मई 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सीलेंट मौका। विजिट leesascosmetics.com।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह,
7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 6
3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायलर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ गर्मा गर्म अब तक की खबरें लेकर स्टूडियो में दरामद हो गई हैं, बल्कि बरामद हो गई, दरामद नहीं, माय बैड, बरामद हो गई हैं। शाजिया मलिक साहिबा, आइए उनको खुश आमदी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS मेरे अजीज, हम वतन ठीक हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अभी तक ठीक हो? बमशम नहीं पड़ा तुम लोगों के ऊपर कोई?
नहीं, ऐसे तो बच्चे फाड़ते हैं गली मोहल्ले में, वो जवाहरात वगैरह तो पढ़ाई पट 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 पट,
हम नहीं डरते।
नहीं, आपने देखी नहीं वीडियो, वो आगे मिसाइल के गिरा था तो लोग खड़े हुए थे वहाँ सामने,
वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और उसके हिस्से उठा उठा लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे लिए सूबेनियर है, हम अपने आने वाली नस्लों को
साल के बाद बताएंगे भाई।
और कुछ तो कह रहे हैं किधर है रफाइल गिरा, उसके पार्ट्स उठाओ बेचे, ब्लैक मार्केट में जाके बेचे।
तो ऐसी कॉम हो, मतलब इस कॉम को आप कभी हरा सकते हो किसी
चीज़? भी नहीं, यानी हर चीज में फन बनाया हुआ है उन्होंने,
मीम बना देते हैं,
मीम बना, टिकटॉक
बना देते हैं, कुछ बनाए ना बनाए।
एक तो मुझे रफायल का कोई पता नहीं क्या गिरा, वो कोई पर्स आया हाँ। क्या उसके ऊपर चादर डाल के कह रहे हैं हम इसकी फतेह पढ़ रहे हैं और क्या क्या कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो इनके पायलट नहीं पकड़े हैं।
मैं तो कहता हूँ जो आज वो कुछ 26 ड्रोन मारे हैं गिराए पाकिस्तान ने, जाहिर इस्लामाबाद में भी हिट हुआ है, कराची में भी खबरें आ रही थी, बात हुई थी मेरी, वहां भी हिट हुआ है, लाहौर में
हुआ। और तुम्हें पता है मजे की बात क्या है कि मिलिट्री ने जाके सारी जगह की डबरी दिखाई है सारों को, उन्होंने कहा है
देख लो अब हमारी डबरी दिखाओ जो जो आप कह रहे हो ना कि वो उड़ा दिया डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया
ये किया वो दिखाओ तो सही दिखाओ तो वीडियो तो बताओ ना वीडियो।
लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा एक और मसला है, आपको पता है पाकिस्तान कौम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 26 मारे
हाँ।
उसमें से एक आध तो अंदर ही गिरा होगा कहीं ना कहीं हाथ तो लग गया होगा
हाँ।
और ये है इजरायली टेक्नोलॉजी
हाँ, इसको खोल के देखते हैं क्या है टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर।
अब आप देखें
हाँ। नहीं उन्होंने क्या करना है आमिर उन्होंने क्या करना है देखो हमारे लोग जो है ना उनको जरा आराम की ज्यादा जरूरत है वो थक गए बहुत ज्यादा 20 साल इन्होंने वॉर ऑन टेरर लड़ी है ना अभी वो क्या करेंगे वो जो चीनी दोस्त है ना अपने वो उठा के उसको दे देंगे बोलेंगे भाईजान इसके खोलो
रिवर्स इंजीनियरिंग करो रिवर्स इंजीनियरिंग
इसका एक एक पेज खोलो और देखो उन्होंने अपने चीनों दोस्तों को कह देना
अगर वो चीनी को देंगे ना और हाँ। वो पेज खोलने पे आ गए
हाँ।
बोलेंगे तो पेज हमारे लगे हुए मशीन इनकी है लेकिन पेज ये मेड इन चाइना वो टेक्नोलॉजी देखो चीना तो मैंने कहा ना खोल के भेज देता ठीक
हाँ।
है टेक्नोलॉजी इजरायली होगी उन्होंने वहां की होगी लेकिन उसको असेंबल करने के लिए जो मटेरियल यूज किया
डेफिनेटली चीनों का होगा
100% कोई ऐसी चीज दुनिया में ऐसी है नहीं जहां आप कह देंगे नहीं जी कोई चीनी का कोई ना कोई पार्ट या कोई ऐसा एलिमेंट।
कल तो मुझे इतना प्यार आया उनकी एक मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन था उसका इंटरव्यू जी बड़ा चल रहा था तो उन्होंने बड़े एलिगेशन ये है वो है फ्लाइटिंग उन्होंने कहा जी नहीं पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या करेंगे उन्होंने कहा जी वो आगे से कहते हैं वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान
बहुत खुल के आया
बहुत खुल के यानी देखो ना कॉम्युनिज्म है वहां पे कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है कोई बंदा अपनी पर्सनल उसमें स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता तो उसको डेफिनेटली जो है मैनेज वो जो है लीडरशिप जो है उसने डेफिनेटली कहा कि एक तो नंबर वन तुम्हें इजाजत है जाने की उधर अमेरिकन चैनल पे नंबर टू ये कि तुमने बिल्कुल कहना है कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ऐसे तो मैं कह रही हूं कि देखो एक तो कौन आया खुल के जो आया तुर्की ने कहा जी हम तुम्हारे साथ खड़े
चाइना आया ईरान का भी आपके
ईरान ने भी कहा ईरान ने भी कहा कि हम भी आपका आपको तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को जरा आंखें खोल के अब देख लेना चाहिए कि
कौन आपके साथ
असल फ्रेंड्स कौन है
असल फ्रेंड्स
कौन से एक्चुअल फ्रेंड्स कौन है तुम्हारे तो तुम्हें पता होना चाहिए तो अब तुम जो है ना कटा दो सरों को बस अब ये जो है ना बाकी के ये चलो जी हम अपनी
खबरें
शुरू करते हैं
और जनाब खबरें आप हमारी eawaz.com पर भी सुन सकते हैं 24/7 आप eawaz यानी www.eawaz.com पर लॉग इन करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां आपको स्टैटिक फील हो रहा है ऑडियो में तो आप 6478724900 डायल कीजिए। इसके अलावा हमारा eawaz टीवी तमाम ही IPTV बॉक्सेस पर मौजूद है तो आप 24/7 हमारी नशरियात वहां पर भी सुन सकते हैं और स्टूडियो में कॉल करने के लिए 416-620-1778 416-620-1778 हमारा यूट्यूब चैनल eawaz टीवी एंड रेडियो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। चलें जनाब गर्मा गर्म खबरों की तरफ बढ़ते हैं जी चलें
बिल्कुल जी ठीक है क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी जो है बहुत ही कम रहता है
खबरों के बाद हम जो है भूली बिसरी यादें लियाकत मलिक साहब पेश करते हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे तो 7 से लेकर ऑनवर्ड भूली बिसरी
यादें बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी ये देखो जी इन्होंने ये कितनी अन्नी पाई हुई है ये जो सैलरियां देखो और हम जैसे बेचारे जो मस्कीन गरीब लोग हैं हमारे पास जो है सैलरियां जो है वो ठीक ही नहीं है हमारी। ये जनाब आज ये जो सर आया इसमें उन्होंने कहा जी कि पीए पॉलीएफ साहब की जैसे कि कितनी सैलरी है तो वो कहते हैं जी जिस वक्त गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हुई थी उस वक्त तकरीबन ये जो है पीए पॉलीएफ साहब 309,700 एनुअली जो थे वो ले रहे थे। एमपी की जो बेस सैलरी होती है एक तो जो 209,800 होती है उसके साथ एडिशनल 99,900 इनको मिल रहा था एज लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वो कहते हैं जी कि ये जो है अभी भी कहा जा रहा है इनको कि आप स्टोर्नो वे के अंदर रह सकते हैं क्योंकि ये जो है ऑपोजिशन लीडर जो है उसका रेजिडेंस होता है उनको ड्राइवर मिला होता है सिक्योरिटी डिटेल्स मिले होते हैं और वो कहते हैं जी कॉकस का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो यहां से निकालें। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो रिवर क्रॉफर्ड की बाय इलेक्शन होने वाली है उसमें शायद ये जीतेंगे और फॉल जो सिटिंग होगी पार्लियामेंट की उसके अंदर बैठेंगे। अकॉर्डिंग टू हाउस ऑफ कॉमन्स का जो फैक्ट शीट आया है 2021 में जो इलेक्शन हुए थे और उसके अंदर अगर किसी को री इलेक्शन नहीं मिला है तो उसको सिर्फ $15,000 दिया जाता है ताकि अपने आप को वो इस्टेब्लिश कर सके। लेकिन अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स का जो सैलरी आपको होता है वो फिर आप लूज कर देते हैं, वो आपको नहीं मिलता, लेकिन सेवरेंस जो अलाउंस है वो आपको मिलता रहता है, दैट इज 50% ऑफ द सेशनल अलाउंस। तो इसमें वो कहते हैं जी कि इनको अब जो सेवरेंस पेमेंट मिलेगा पीए पालियाफ साहब को वो है 169,850। और क्यूरेक्स साहब जो हैं, जिनकी अगर आप हमारा देख रहे हैं टीवी तो आप देखेंगे उनकी तस्वीर पीए पालियाफ के साथ, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ये जो है रिवर क्रॉफर्ड की जो है राइडिंग ये छोड़ूंगा। तो ये एज एन एमपी ये अब छोड़ रहा है और ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। वो कह रहा है कि जी मैं ये छोड़ रहा हूं इनके लिए ताकि ये इलेक्शन लड़े, तो ही विल फॉरगो अ सैलरी ऑफ 209,800। यानी सोचे कि आजकल के जमाने में जब जॉब्स ही नहीं है तो इतना बड़ा सैलरी को छोड़ देना। और वो कहते हैं जी कि जो है ये he'll be paid until he officially resigns or to the and submits the resignation to speaker or party whip, तो उस वक्त तक इसको जो है ये सैलरी मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं। एक बंदे को आज हॉस्पिटल लेकर गए विद माइनर इंजरीज, क्योंकि दो स्कूल्स जो थे आज मिसेस सागा के वो होल्ड एंड सिक्योर के अंदर डाले गए थे, और अब जो है पता चला थोड़ी देर पहले कि ये अब जो है होल्ड एंड सिक्योर लिफ्ट कर लिया गया है। ये वाकया जो है हुआ है 8 AM के पास तकरीबन नियर लंडेन रोड नॉर्थ ऑफ रॉयल विंसर ड्राइव, और यहां पे जो एरियल फुटेज दिखाया जा रहा था पुलिस की तरफ से वो ये दिखाता है कि सारे का सारा इलाका जो उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था, ये रेजिडेंशियल इलाका था काफी बड़ा। और यहां पे जो सेंट हेलन एलिमेंट्री एंड क्लार्कसन सेकेंडरी स्कूल जो थे इनको इसमें ये जो है अनाउंस किया गया था। अभी तक कोई और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि सस्पेक्ट्स कौन थे, ये कैसे गोली चली, ये इंजरीज कैसे आए, इस तरह की कुछ भी डिटेल्स नहीं आए हैं। पार्किंग अगर आप करते हैं कभी भी टीटीसी के लॉट्स के अंदर तो अब उसकी फी जो है इस समर में बढ़ने वाली है। रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि ये रिकमेंडेशंस जो हैं ट्रांजिट बोर्ड के पास गए हैं कि प्राइसेस जो हैं 23 लॉट्स में से 10 की बढ़ा दी जाए टू जनरेट $1 million इन 2026। वो कहते हैं जी कि ये जो पार्किंग रेट्स हैं ये कवर नहीं करते हैं मेंटेनेंस, स्नो क्लियरिंग और लीजेस, तो इसलिए इनको बढ़ाने की जरूरत है। और वो कह रहे हैं जी कि 8 वेल यूटिलाइज जो लॉट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़े रहते हैं वहां पे $8 पर डे करें, और जो दूसरे हैं उसके अंदर तो 71% डेली पीक ऑक्यूपेंसी होता है, तो जिसके अंदर इससे कम है तो वहां पे बेशक ना आप बढ़ाएं। तो ये अब अगर ये रिकमेंडेशन जो है ये अप्रूव हो गया तो फिर आपका 1 जुलाई से इनके पैसे बढ़ जाएंगे। और जनाब आज फर्स्ट अमेरिकन पोप जो हैं वो जीते हैं, और उनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। 69 ईयर्स उनकी एज है, उनको सिलेक्ट किया गया है 267th पोप। ये पैदा हुए थे शिकागो इलिनॉय के अंदर, और इन्होंने अपने आप को कहा है कि मुझे बोला जाए पोप लियो 14। ये एक अमेरिकन मिशनरी थे जिन्होंने अपना करियर जो था स्पेंड किया था पेरू से, और फिर उन्होंने लीड कर रहे थे अभी इस वक्त वेटिकन का जो बहुत ही पावरफुल ऑफिस ऑफ बिशप्स है। ये जो है मेंबर हैं ऑगस्टीनियन रिलीजन सेक्ट के, और उसको ही लीड कर रहे हैं 10 ईयर्स से। बैचलर्स ऑफ मैथ्स है इनके पास फ्रॉम विलानोवा यूनिवर्सिटी इन पेंसिल्वेनिया, और फिर डिप्लोमा इन्होंने लिया था थियोलॉजी में फ्रॉम कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन ऑफ शिकागो, और ये इन्होंने पढ़ाई की है कैनन लॉ एट पॉन्टिफिकल सेंट थॉमस एक्विनस यूनिवर्सिटी इन रोम में भी, और इनको जो है वो प्रीस्ट बनाया गया था जून 1982 में। तो आज जिस वक्त इनका नाम अनाउंस हुआ तो ये जो वो सेंट्रल विंडो है सेंट पीटर्स बसिलिया की वहां पे ये अपीयर हुए। विया डेला कॉन्सिलियाजियन जो है यहां पे वेटिकन का मेन एवेन्यू, उसमें बेशुमार लोग आज जो थे वो जमा हुए हुए थे, और वो भाग के आ रहे थे सेंट पीटर स्क्वेयर के अंदर नए पोप को देखने के लिए। ट्रंप साहब ने आज जनाब एग्री किया है एंड दिस इज रियली बिग एंड हिस्टोरिक कि हम कट करेंगे ये जो है टैरिफ्स जो हैं ऑन यूके ऑटोज और स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है जो अमेरिकन बीफ और स्ट्रीम लाइन किया है उसको, उन्होंने कस्टम्स प्रोसेस को और बहुत सारी और जो चीजें हैं उनको फाइनलाइज आज किया गया है। ये कहते हैं जी कि पॉलिटिकल विक्ट्री है ये यूके की बहुत ज्यादा, और इसके अंदर स्पेशली जो पीएम है कॉर स्टार्मर उनके लिए। आज ट्रम्प साहब ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो है बहुत ही, अभी इसका फाइन प्रिंट तो सामने नहीं आया कि, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ये डिटेल्स हैं जो कि हम आपको दे रहे हैं। और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि जो बेसलाइन 10% टैरिफ है वो तो अपनी जगह के ऊपर रहेगा, लेकिन ऑटो टैरिफ जो है वो उसके ऊपर जो 27.5% जो टैरिफ था उसको अब 10% कर दिया गया है ऑन कोटा ऑफ 100,000 व्हीकल्स। इम्पोर्ट टैक्सेस ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम जो है वो भी 25% से खत्म करके 0% पे लेकर आएंगे। स्टार्मर साहब ने आज बड़ा याद दिलाई इनको, अमित रहिए इसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनकी बड़ी इनके बीच में बोन हॉमी थी और बड़ा इनके बीच में प्यार था इंग्लैंड और यूएस के बीच में, तो उसकी याद दिलाई। और उन्होंने आज कार स्टार्मर साहब ने कहा कि जी हम जो है 80 ईयर्स से हमारी दोस्ती है और आगे भी 80 ईयर्स जो है वो रहेगी और हम एक दूसरे के साथ साथ खड़े रहेंगे। सीनियर यूएस ऑफिशियल्स जो है उन्होंने आज वार्न किया है कि जो अमेरिका है अभी जो, क्योंकि ट्रम्प साहब जा रहे हैं, हम आपको बता ही रहे हैं बहुत दिनों से अब कि कतर यूएई और सऊदी से मिलने के लिए जा रहे हैं, कि ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अब सऊदी के अंदर जिस वक्त वो जाएंगे तो अपनी वो डील जो है वो मान जाएंगे और सऊदी के साथ करने के लिए, अगर इसराइल उनके साथ नहीं भी खड़ा है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इसराइल से। इसराइल बिल्कुल जो है सीज फायर का टॉक्स जो है वो नहीं कर रहा है और इसराइल को इसका बहुत ज्यादा जो हैवी प्राइस देना पड़ेगा। ये कुछ ऑफिशियल्स हैं जो कि मीडिया के साथ बात कर रहे थे जिन्होंने कि ये सारे डिटेल्स दिए। उन्होंने कहा जी कि ट्रम्प साहब जो है बिल्कुल ही इज डिटरमिंड कि ये सारा कुछ डील अपनी आगे लेके जाएंगे सऊदी के साथ, और इसमें हूतीज की शायद कोई जो है वो सीज फायर की शायद बात हो सकती है, नॉट रियली 100% श्योर। उन्होंने कहा जी कि ये डील ऑफ द मिलेनियम है जो कि होने जा रही थी और जो इसराइल उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, तो ट्रम्प साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि नॉर्मलाइज तो टाइज करवाना चाहते हैं सऊदी और इसराइल के बीच में, लेकिन जो है वो इसराइल राजी नहीं हो रहा। तो ऑफिशियल ने कहा कि जी इसराइल जो है वो अगर आना चाहता है ये हिस्टोरिकल ट्रेन के ऊपर तो आ सकता है, वरना हम स्टेशन पे अकेले खड़े नहीं रहना चाहते हैं, यानी कि हम का मतलब यूएस। जेडी वैंस जो है जी आपको पता ही है कि उन्होंने जब अपना पहला, जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे तो अपना ट्रिप लिया था एट द 61st एनुअल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फरवरी 14 में, और बहुत ही अग्रेसिव इनका स्टैंस था, लेकिन आज जब वापस ये पहुंचे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे तो आज इनका बहुत ही रिकंसिलिएटरी किस्म का था, और इन्होंने जो आज स्पीच की इन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने चाहिए लेकिन कुछ हमको लाइन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, हमें अमरीका में इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, तो ये जो फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है ये हर किसी के लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट है, और आप बिल्कुल हमसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक लिजिटिमेसी है ये कायम रहे हमारी सिविलाइजेशंस के अंदर। ईरान के ऊपर उन्होंने आज बहुत ही जो है वो एनकरेजिंग बातें की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ईरान के साथ हमारी बात हो जाएगी और हम आगे उसके साथ चलेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो है जी बिल गेट्स साहब की है, 69 ईयर्स उनकी एज है। आमिर सानू कितने पैसे चाहिए? $1 मिलियन। और ये चैरिटी में कितने देने वाला है? $200 बिलियन। पायल साड़ी तरफ भी देखो, बिल गेट्स साहब तुसी मैनू पता तुसी रोज मेरी खबरां सुनते हो, प्लीज मेरी तरफ देखो। बिल गेट्स साहब जिनकी एज 69 ईयर्स है वो कह रहे हैं कि 99% ऑफ मेरी जो वेल्थ है इन द नेक्स्ट टू डेकेड्स मैं वो चैरिटी में दे दूंगा। 99% 1% खाली पाया ने भी ना रखो सानू दे दो है। वो कहता है कि ये गेट्स फाउंडेशन को मैं दे दूंगा इससे पहले कि वो 2045 में जो है वो बंद हो जाएगी। उन्होंने आज एलॉन मस्क के ऊपर बहुत ज्यादा जो है एतराज किया, उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत ज्यादा जो इसने यूएस फंडिंग काट ली है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो एसेंशियल फूड और मेडिकल असिस्टेंस मिलता था पुअर कंट्रीज को ये अभी बंद हो गया है, और वो कहते हैं मुझे बड़ा हैरत है कि दुनिया का रिचेस्ट आदमी जो है वो दुनिया के पुअरेस्ट किड्स जो है उनको मरते हुए देखता जा रहा है। तो इस वक्त जो बिल गेट्स की जो टोटल नेटवर्थ है वो 108 बिलियन है, लेकिन वो कहता है जी कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी फाउंडेशन जो है 200 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो खर्च करेगी 2045 तक। और वो कहते हैं जी मेरे बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि वैक्सीन के बीच में आया था कि जी इसने जानबूझ के ये सारा शुरू किया, और वो कहते हैं जी मेरे बारे में सब कुछ लोग कहेंगे मेरे मरने के बाद, अलबत्ता ये वो नहीं कहेंगे कि मैं जो है वो रिच मरा हूं। तो बयान रिच मरना कोई बैड बात तो नहीं है। अब बयान में तो आप मेरी तरफ देखो प्लीज जी। तो बस जनाब ऐसा है, जर्मन चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज, अब ये पता नहीं कैसा नाम है, बहरहाल नाम है फ्रेडरिक मर्ज जो है, उन्होंने आज जो फ्रांस के साथ बड़े प्यार मोहब्बत की बातें फिर से जताई है और उन्होंने कहा जी कि यूरोप के अंदर ये जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस आगे है उसको हम ज्यादा डीपर इंटेग्रेशन से आगे चला सकते हैं। और आज उनकी मुलाकातें जो है मैक्रॉन साहब के साथ पेरिस में हो रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी चैलेंजेस है फ्रांस को, यूरोप को, ये फ्रांस और जर्मनी अंडर फ्रेंको जर्मन कोऑपरेशन जो है इसको आगे लेकर जाएगा। खासतौर पे इनके सबसे बड़े कंसर्न यही है कि यूएस अब सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दे रहा है तो फिर हमको मिलकर थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा और यूक्रेन के लिए नेक्स्ट फ्रेमवर्क जो है वो कैसे बनाएं, तो इसके ऊपर जो है बातें। अच्छा जनाब, यूएई जो है ना वो हर मुझे लग रहा है पुठी चीज के अंदर है, लेकिन बहरहाल यूएई के बारे में ये खबर आई है कि इसराइल और सीरिया के बीच में जो है वो बैक चैनल टॉक्स जो है वो शायद करवा रहा है, खासतौर पे सीरिया के जो न्यू रूलर्स है, ताकि ये जो बहुत हॉस्टिलिटीज बढ़ गई है क्योंकि कॉन्स्टेंटली इसराइल जो है सीरिया के ऊपर भी अटैक कर रहा है और सीरिया ने पहले ही कहा था कि हम अपना जो सदर्न नेबर है उससे हम बहुत ज्यादा दुखी है। ये इनडायरेक्ट टॉक्स जो है इनका फोकस जाहिर है कि सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस मैटर्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहा। सीरियन प्रेसिडेंट अहमद शारा जो कि विजिट जिन्होंने किया था अभी अप्रैल 13 को यूएई में, उस वक्त भी इनको पूछा था जिस वक्त रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स ना देते हुए कहा था कि हाँ इनडायरेक्ट नेगोशिएशन तो उनके साथ हो रहे हैं ताकि चीजों को काम किया जा सके। आज ये जो रिपोर्ट आई है ये सारी की सारी आई है कि इसके अंदर बैक डोर या बैक चैनल जो टॉक्स थे वो असल में यूएई ही करवा रहा था। और उन्होंने कहा जी कि ये हमने और भी बहुत सारे स्टेट्स को कहा है जो कम्युनिकेट करते हैं इसराइल को कि इनके ऊपर प्रेशर डाले ताकि ये इंडिया के सीरिया के इंटरनल मामलात के अंदर इंटरफेयर ना करे और हमारी एयर स्पेस वायलेट ना करे और हमारे जो इंस्टॉलेशन है उनको स्ट्राइक ना करे। पुतिन साहब ने ऑर्डर दिया है जनाब 3 डे का ट्रूस विद यूक्रेन और वो कहते हैं जी हम टेस्ट करना चाहते हैं कि यूक्रेन कितना रेडी है। ये जो इस वक्त मॉस्को के अंदर चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ब्राजील के लुइस इकासिनो लूला डिसिल्वा, सर्बिया के अलेक्सांडर व्यूकिक जो है वो उधर पहुंचे हुए हैं मॉस्को के अंदर टू सेलिब्रेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री जो थी नाजी जर्मनी के अगेंस्ट। पुतिन साहब ने यह वैसे यूनिलैटरली ये ऑर्डर दे दिया था कि ये मॉस्को के अंदर विक्ट्री डे परेड जो हो रहा है अब कल जो होने वाला है जो फ्राइडे को, तो उसकी वजह से लड़ाई वड़ाई हम रोकना चाहते हैं, तो यूक्रेन ने इसको मिस किया। उन्होंने कहा जी कि ये तुम थिएट्रिकल्स कर रहे हो और तुम इसमें जो है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, हम तो 30 डे का सीज फायर कह रहे थे। इससे पहले ट्रंप साहब ने आपको पता है बेतहाशा कोशिश करने की कोशिश की थी, बल्कि अपने इलेक्शन ट्रेल पर वादा भी किया था कि विद इन 100 डेज में यह सारी लड़ाई वड़ाई इनके बीच में खत्म करा दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और जेलेंस्की साहब ने आज फिर से कहा है कि 30 डे सीज फायर रहेगा तो फिर हम इसको मानेंगे, लेकिन जैसे ही अभी 3 डे का भी जो सीज फायर किया था उसके साथ ही लड़ाई फिर से इनके दोनों के बीच में शुरू हो गई थी। ट्रंप साहब जो हैं आज व्हाइट हाउस में उनसे फिर से लोगों ने उनसे पूछा रिपोर्टर्स ने कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मामलात पे आप क्या बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया पाकिस्तान जो है दोनों जो है दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद मी और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं और ये इट इज टेरिबल ये जो वॉर चल रही है इनके बीच में, ये बिल्कुल इमीडिएटली स्टॉप हो जानी चाहिए एंड आई वॉन्ट देम टू वर्क आउट टूगेदर, ये जो टिट फॉर टैट ये सारा कुछ चल रहा है इसको फौरन बंद होना चाहिए। इसके अलावा आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने भी कहा कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हमारी मीटिंग है पाकिस्तान के साथ, जो फंडिंग हमने रीस्केजलिंग करनी है कल यानी कि मई 9 को, होपफुली वो भी जो है वो जाएगी अच्छी तरफ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेजोल्यूशन और डी एस्केलेशन होगा। इस मौके पर बात करते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि हम अपनी एक एक इंच का जो है वो डिफेंस करेंगे। वो उन्होंने उस वक्त कहा जिस वक्त यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया और रूबियो साहब ने वैसे कंडेम किया इंडिया ने जो किल किए हैं सिविलियंस और इंजर किए हैं बहुत सारे दूसरे और डैमेज किया है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर अफसोस किया। पीएम ने कहा जी कि हम बिल्कुल अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एट एवरी कॉस्ट हम डिफेंड करेंगे और इंडिया का ये जो अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ वॉर है उसकी वजह से पाकिस्तान अब अपना सेल्फ रिजर्व रखता है राइट टू सेल्फ डिफेंस under Article 51 of United Nations Charter. According to ISPRG, आज 25 इसराइली मेड हैरोप ड्रोन्स जो है वो जो इंडिया ने डिप्लॉय किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको पाकिस्तान मिलिटरी ने गिराया है। ये इंतहाई खतरनाक ड्रोन्स है, सॉफ्ट किल टेक्निक है और हार्ड किल वेपन्स बेस्ड सिस्टम है ये, और ये जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पहले भी अटैक किया था तो उसके 5 तैयारे और ड्रोन्स जो है वो गिराए थे, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारे हमारे सिविलियन जख्मी हुए थे। लेकिन इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन 40-50 के करीब जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो भी जख्मी किए गए हैं इन अटैक्स के अंदर। तो इंडिया का ये जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है और उसके जो लॉसेज LOC पे हो रहे हैं वो तो देखने के लायक ही है। पाकिस्तान में आज ये जो डिफरेंट जगहों पर 25 जगहों पर ये जो गिरे हैं ड्रोन्स, उसका डेब्री जो है सारा कुछ दिखाया गया और वो अब उसको और अब सारे एरिया को कॉर्डन करके उसको रिकवर कर रहे हैं सारा कुछ उठाने के लिए। पाकिस्तान मिलिट्री ने कहा कि जी अगर कोई भी हमारी तरफ हॉस्टाइल डिजाइंस किसी के है तो हम बिल्कुल उसकी इस एग्रेशन का पूरा भरपूर जवाब देंगे। हैरोप जो ड्रोन्स है उसका डुअल कैपेबिलिटी है, एक तो वो हूवर कर सकता है बैटलफील्ड के ऊपर और जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको भी टारगेट एनिमी के कर सकता है। बहुत ही क्रिटिकल एसेट है, सेल्फ प्रोपेल्ड है और जो है ये अगर इसके साथ अगर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अगर ये टारगेट को एंगेज ना कर सके तो ये बेस के ऊपर वापस आ जाता है। ये वही ड्रोन है जिसको कि आजरबाईजान ने अभी कुछ अर्सा पहले आर्मीनिया के खिलाफ यूज किया था इन नागोरो काराबाख में इन 2016 में भी और 2020 के अंदर भी। आज एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी जिसमें कि इसहाक डार साहब और उनके साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी थे। इसहाक डार साहब ने कहा कि बहुत सारे इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को ब्रीच करने का कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उनमें से एक ने जो लाहौर में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर भी अटैक किया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमको इनको कैसे डील करना है। इंडिया ने हमारे ऊपर हाईली प्रोवोकेटिव और डेंजरसली एस्केलेटरी अटैक किया है और इसके साथ साथ उन्होंने अपने लोगों के भी ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा जी कि डार साहब ने कहा कि अमृतसर के ऊपर भी, जो कल आपको याद है मैं खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान ने अमृतसर पे किया, तो वो उसका डार साहब कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान ने नहीं किया, खुद इंडियन मिलिट्री ने अमृतसर के ऊपर 3 प्रोजेक्टाइल डिलिबरेटली गिराए थे और चौथा जो था वो पाकिस्तान की तरफ भेजा था जिसको कि पाकिस्तान मिलिट्री ने न्यूट्रलाइज किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो बिल्कुल डिसाइसिव जवाब देगी अगर कोई हमारी तरफ देखेगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए वो उन्होंने आज डिसमिस किए इंडियन क्लेम्स जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के 15 साइट्स पे जो है हमला किया है। इन्होंने अहमद शरीफ साहब ने कहा कि ये बेसलेस और फिक्शनल है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई थिएटर नहीं है, ये बैटल फील्ड है और क्या इंडियन आर्मी और उसका जो मिलिट्री नहीं खाली बस उनका गवर्नमेंट जो है वो भी 18 सेंचुरी में रह रहा है, उनको जरा रियलिटी की तरफ आना चाहिए। तो उन्होंने जो भी कोई विजुअल्स दिखा रहा था इंडिया उन्होंने कहा कि इनको रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जिस वक्त किसी जगह पे कोई ड्रोन या जहाज गिरता है तो ये जैसे दिखा रहे हैं कि एक फील्ड में गिरा है तो उसके आसपास आग कैसे नहीं लगी हुई है, वो बिल्कुल ऐसे कैसे है कि बस वो एक तैयारा आके जैसे किसी ने रख दिया है बीच में तो आसपास का सारा एरिया बैरन कैसे है, क्यों जला हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो इस तरह का कुछ हरकत करते हैं तो उसको जरा थोड़ा ऑथेंटिक बनाने की कोशिश किया करें, थोड़ा आग वाग लगाए साइड पे। तो वो कहते हैं जी कि ये जिस वक्त भी ये ईस्ट की तरफ से कोई भी चीज उड़ के आती है तो हमारी नजर उसके ऊपर पूरे से होती है, हम उसको मॉनिटर करते हैं और डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको फॉलो कर रहा होता है। आज क्योंकि इंडिया ने फिर से एक सेकेंड अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया है और बिल्कुल उसका मिलिट्री रेस्ट्रेंट नहीं शो कर रहा है तो इसके ऊपर आज पाकिस्तान ने इन्वोक किया है आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर टू जस्टिफाई इट्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिन टू सेल्फ डिफेंस और वॉर्न किया है कि एक हम बहुत ही रोबस्ट किस्म का रिस्पांस देंगे। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है वो ग्लोबल लीडर से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है एस्केलेट करने का, तो अब मामले सारे पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज कौम से खिताब में पार्लियामेंट में बोलते हुए बोला कि पाकिस्तान को हर राइट है कि वो अपने जमीन को इंडियन इम्पोज्ड वॉर से बचाए और उसका बहुत ही हम स्ट्रांग रिस्पांस भी दिए भी हैं और देने भी वाले हैं। उन्होंने कहा जी कि जो ऐसा कुछ भी इस चार्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं करता है जो कहता है कि आप इम्पेयर कर सकते हैं अपना इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस अगर कोई आप पे अटैक करता है जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी है, अनलेस एंड अंटिल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको जो है बताया जाए कि ये इसको इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखने के लिए उसको ये कदम उठाना ही पड़ा था। तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि फौरन अगर आप इस तरह का कदम उठाते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल को बताएं, तो जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो कहती है जी हमने बता दिया, हमने इन्फॉर्म अब आपको कर दिया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान का रिस्पांस जो ये इंडियन मिसल अटैक के लिए था उसमें तकरीबन 40 से 50 इंडियन सोल्जर्स जो है एलओसी के ऊपर डेथ उनकी हुई है, वो बात आज कर रहे थे ऑन अ मोशन इन नेशनल असेंबली और उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने पूरी, जिस तरह मोदी जी ने वैसे ही हमने भी पूरी जो है वो खुली छुट्टी दी है अब आर्म्ड फोर्सेज को कि जब और जहां और अपना प्लेस ऑफ चॉइस जो है उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये हमारी तरफ जो भी आएगा फिर हम भी उसी पावर से उसको रिटेलिएट करेंगे और जो पहला हमारे खिलाफ जो अटैक किया था तो वो दुनिया ने देख लिया है कि हमने कैसे किया और आइंदा भी अगर कोई इस तरह का किया तो दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा जी इंडिया की एरोगेंस जो है हमने शैटर की है और अपने आप को बहुत ही इनविंसिबल समझता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और अभी कितना ह्यूमिलिटी उसको फेस करना पड़ रहा है। हम ऐसी कौम है जो कि जब चैलेंजेस आते हैं तो हम यूनाइट हो जाते हैं और मैं सैल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान मिलिटरी को और उसके हीरोज को जिसने के इंडिया के एयरक्राफ्ट भी और ड्रोन्स भी जो है वो मार गिराए हैं। इंडिया ने अगर अपनी अब पॉलिसी चेंज कर ली है और अगर वो सोचता है कि उसके गोल्स जो हैं हाईटेक वेपन्स यूज करके अभी पूरे हो गए हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अपनी डिस्पाइट अपनी जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तानियों की रेजिलियंस और यूनिटी के खिलाफ वो खड़ा नहीं हो सका है। और उन्होंने कहा जी आज तारर साहब ने कि राफेल के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट क्योंकि अब इसके शेयर्स जो है वो 18% गिर गए हैं राफेल तैयारों के। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने भी डिसमिस किया आज इंडियन क्लेम्स को कि उन्होंने पाकिस्तान का एक जो है एयरक्राफ्ट गिराया है। खजा साहब बड़े मजे के हैं वैसे। आमिर सुनो क्या कहा खजा साहब ने। खजा साहब कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री कहती है जी कि हमने पाकिस्तान का एक तैयारा गिराया और 4 पायलट पकड़े हैं। तो खजा साहब कहते हैं ये प्लेन है, रिक्शा नहीं है जिसमें 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे बात तो खाजा साहब आपकी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो बात वही है भोकलाट में आज उन्होंने वो जैसे किया ना, वो एक तैयारा से जाके रख दिया है फील्ड में, फील्ड बिल्कुल ठीक है आसपास का, तैयारा तो ना उधर आग लगी हुई है ना कुछ। और इसी तरह जी पाकिस्तान के 4 पायलट भी पकड़ लिए हैं, हालांकि वो जो एक होता है वो ऐसे आपको पता ही है वो ऐसे पतला सा जो जहाज में एक ही, तो कहते हैं जी 4 पायलट हमने पकड़ लिए हैं, वो पता नहीं। अच्छा जी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी हमने जो है बहुत सारे इंडियन ऑफिशियल्स के साथ बात किया है और ये जो एटलीस्ट जो विटनेसेस हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, 2 जो पाकिस्तान ने इनके तैयारे गिराए हैं उनका तो वो बिल्कुल जिक्र करते हैं इंडिया के अंदर और वो कहते हैं जी कि इंडिया की फोर्सेज को काफी हैवी लॉसेज भी हुए हैं। दिस इज न्यूयॉर्क टाइम्स, दिस इज नॉट अस सेइंग। वो कहते हैं जी कि इंडिया की फोर्सेज को भी काफी हैवी लॉसेज हुए हैं, उनके जो तैयारे हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में गिरे हैं और वो कहते हैं जी कि और भी 3 ऑफिशियल्स और लोकल जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनसे और हमने बात की और वो कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल 2 जो तैयारे गिरे हैं उनका तो डेबरी जो है हमारे बिल्कुल सामने ही है। जरा है वे नवदीप, जरा आप वो दिखाओ वो जो भटिंडा के अंदर एक गिरा है जो तैयारा इनका गिरा है, वो जरा वीडियो आप दिखाएं। अच्छा इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी कि हमने एक और भी इंडियन ऑफिशियल जो है उससे पूछा तो उसने मान लिया है कि हाँ पाकिस्तान ने 3 तैयारे गिराए हैं। 2 अदर इंडियन ऑफिशियल्स ने अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स वो कहते हैं जी कि उन्होंने कहा है कि 1 कश्मीर में और 1 पंजाब में भी गिरा है और ये सारी जो तस्वीरें हैं ये यहां पे वुयान विलेज जो है उसके अंदर से सामने आई हैं जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। अच्छा अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी कि हमने ये जो हमारे एक एनालिस्ट हैं आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज में ट्रेवर बॉल, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ये जो टैंक इनका ये जो गिरा हुआ है ये रियातो रफायल का या मिराज का है क्योंकि ये फ्रेंच मेड है और ये दोनों ही जो है फ्रेंच मैन्युफैक्चर डिसॉल्व एविएशन वाले जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा आज जो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है उसने भी क्वेश्चन किया है इंडियन एयरफोर्स का। ये देखें जी हमारा जो टीवी देख रहे हैं, ये देखें भटिंडा के अंदर ये जो तैयारा इनका ये गिरा है तो ये सारी इनकी वो कह रहे हैं कि जी यहां पे इंडियन मिलिट्री के बंदे आए हुए हैं और वो जो है ये इसको उठा रहे हैं, यानी कि जाहिर है उठा के उन्होंने गायब करना है यहां से बताने के लिए कि जी कुछ गिरा विरा नहीं है लेकिन ये यहां पे गिरा है और यहां पे मिलिट्री आई हुई है इंडियन और ये उठा रही है अब इसको ना ये तैयारा जो गिरा है। अच्छा जी, अच्छा जी फ्रेंच जो पेपर है वो भी आज उसने क्वेश्चन उठाए हैं इसके ऊपर जो है अपने तैयारों के ऊपर, और उन्होंने बड़ी आज तारीफ लिखी हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एयरफोर्स की। उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तो फिर उनमें ज्यादा है, और उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है कि इंडिया के कुछ अफसरों ने हमें बताया कि बिल्कुल 3 जेट जो हैं हमारे गिरे हैं, जिसमें से कि एक तो एटलीस्ट राफेल जरूर था। तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो अब हौले हौले एडमिट भी कर रहा है कि उसका बहुत ही ज्यादा लॉसेज हुआ है, पाकिस्तान का बहुत डिसाइसिव जो है वो रिटेलिएशन था। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि 2 यूएस ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने भी रॉयटर्स को भी बताया, रॉयटर्स ने भी ये खबर की है कि 2 अमेरिकन ऑफिशियल से हमने बात की है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो चाइनीज मेड पाकिस्तानी फाइटर है उसने बिल्कुल शूट डाउन किए हैं 2 इंडियन मिलिट्री के एयरक्राफ्ट। एक जो यूएस ऑफिशियल है उसने रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान ने यूज किए हैं J-10 एयरक्राफ्ट्स टू लॉन्च एयर टू एयर मिसल अगेंस्ट इंडियन जेट्स। तो वो कहते हैं जी कि उनकी तो कारकर्दगी फिर इनसे फ्रांसीसियों के तैयारों से अच्छी है। न्यू नोटिस टू एयर पर्सन नॉटम, जिसको कहते हैं, वो इशू किया गया था पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से, जिसकी वजह से आज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट बंद किया गया था, क्योंकि आपको पता ही है लाहौर में भी एक इन्होंने ड्रोन मारा था। तो और वो कहते हैं जी कि अब कल यानी कि फ्राइडे को, टुमारो मॉर्निंग वो खोला जाएगा। न्यू इंस्ट्रक्शन जो इशू की गई हैं वो गिलगित और सकरदू एयरपोर्ट्स के लिए भी की गई है, और उनको बोला है कि जिस वक्त तक आप फ्लाइट क्लियरेंस नहीं लेंगे आपके फ्लाइट्स को हम बैन करेंगे। पीएए जो है यानी कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी पीएए ने कहा है कि दूसरे जो ऑपरेशंस थे वो भी बंद किए गए थे, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट, और फिर उनको रिज्यूम किया गया था। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब के अंदर वो 2 दिन और के लिए बंद रहेंगे, और यानी कि आज और कल, और फिर उसके बाद तो सैटरडे संडे आ जाएगा। और उसमें कहा है कि ये जो बयान है ये हर किसी के लिए, पब्लिक और प्राइवेट सारे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए है। कराची एयरपोर्ट जो कि कल खोल दिया गया था थोड़ी देर के लिए, उसको आज फिर से शट डाउन कर दिया गया था। अलबत्ता पाकिस्तान रेलवेज जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है और रेलें चल रही हैं। इंडिया ने कहा है जी कि हम जो हमने कैरी आउट किया है सेकेंड राउंड ऑफ स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, और हमने जो है पाकिस्तान का डिफेंस रेडार्स और एसोसिएटेड सिस्टम्स जो है उसको हिट किया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी कि हमने ये पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है उसकी हमने, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो इलाके थे उसके ऊपर करने की कोशिश की थी, इंडिया ने यूज किए हैं मिसल्स, ड्रोन्स, और जो है वो उसमें वो कह रहे हैं जी कि हमने इस अटैक को रोका है, यानी कि हद हो गई, अटैक आपने पहले किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, अब आप कह रहे हैं हमने अटैक रोका है। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि हमने अवॉइड किया कि मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो हिट ना करे ये जो पाकिस्तान की तरफ से मिसल्स आए थे। इन्होंने यूज किए हैं S-400 मल्टीपल यूनिट्स ऑफ आकाश, सरफेस टू एयर मिसल सिस्टम्स, इंटेग्रेटेड काउंटर UAS सिस्टम्स, और इसके अंदर उन्होंने हैंड हेल्ड स्पूफिंग और जैमिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी यूज किए हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी उसने ऑथराइज किया था मिलिट्री को कि ये जो लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स है और ये जो ब्लेटेंट हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। इंडिया ने कहा जी कि अगर ये क्रॉस बॉर्डर जो ऐसे शेलिंग चलती रही और ऐसे, तो हम भी उसका जवाब देंगे। आज बहुत ज्यादा इंडिया ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग पूंछ के इलाके में चली और 16 सिविलियंस जो है उनकी डेथ हुई। इसके अलावा जो है बहुत सारे एक्सप्लोजन सुने गए पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन बहुत सारे इंडियन जो ड्रोन थे उनको इंटरसेप्ट भी किया गया, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, कराची, चोर, पिंडी, अटक, रावलपिंडी और अटक। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, यानी कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा कि पाकिस्तान ने अटैक करने का कोशिश किया था मिलिट्री अटैक्स को इन अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा, चंडीगढ़ और भोज के अंदर, लेकिन हमने उनको न्यूट्रलाइज किया है। जिसकी भी बात पाकिस्तान कर रहा है कि अगर आपने न्यूट्रलाइज किया तो उसका डबरी दिखाओ, तो वो डबरी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसके अलावा वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने LOC के ऊपर जो है शेलिंग की है इन कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, मेंधर, उड़ी, राजौड़ी के अंदर, जिसके के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S-Jayshankar ने जो इरानियन काउंटर पार्ट हैं सैयद अब्बास आराकची, उनको आज एक ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में न्यू दिल्ली में कहा कि जी हम तो चाहते नहीं हैं कि एस्केलेट करें चीजों को, लेकिन हमारी मिलिट्री जो है वो बिल्कुल फर्म रिस्पांस देगी अगर पाकिस्तान करेगा। इससे पहले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अल जुबेर जो हैं वो बिल्कुल अनअनाउंस्ड जो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी के, वो अन अनाउंस्ड जो है विजिट पे इंडिया आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये इसको डी एस्केलेट करो। जाहिर है कि उनको अमेरिका ने कहा होगा कि भाई जाओ इन्हों पयानू सिखाओ। एक जो एयरक्राफ्ट है इनका, ये क्रैश किया था वीट फील्ड्स ऑफ अकालिया कलान में और उसके अंदर कहा जा रहा है एक सिविलियन की डेथ हुई है और 9 इंजर हुए हैं। इसके अलावा इंडिया ने जो है आज फिर से दावा किया है कि जो टेररिस्ट है अब्दुल रऊफ अजहर, जैश ए मोहम्मद के फाउंडर का भाई जो है, उसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में मारा है और जिसकी के कोई पुष्टि नहीं की गई जैश ए मोहम्मद की तरफ से। बहरहाल फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिश्री, उन्होंने भी आज एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जी ये हम एस्केलेट चीजों को नहीं करना चाहते हैं, हमने सिर्फ जो अप्रैल 22 का पहलगाम का अटैक था उसका जवाब दिया था, पाकिस्तान की चॉइस है। भाईजान जब पाकिस्तान ने पहलगाम किया ही नहीं है, जब आप एविडेंस देने को तैयार नहीं हो, इंटरनेशनल उसके ऊपर जो है प्रोब बिठाने को तैयार नहीं हो, तो आपने कैसे सोच लिया और वो भी आधे घंटे के अंदर है, फटाफट इतनी तेज थोड़ी सिक्योरिटी है, तो फिर बंदे आए भी थोड़े मुल्क मार के चले भी गए, फिर भी तुम फड़ नहीं सके और आधे घंटे में आपको पता चल गया ये पाकिस्तान ने किया। तो भाईजान कोई मतलब ये आपकी बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, कोई थोड़ा शर्म, कोई जैसे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि शर्म होती है, हया होती है, क्या बातें कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई आप, किसको बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा जी, कांग्रेस के लीडर जो है इमाम मसूद, उन्होंने भी आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उन्होंने वैसे तो बड़ी तारीफ की अपनी मिलिट्री की, उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त उन्होंने काम किया, पाकिस्तान पर अटैक किया, उसको मजा चखाया, लेकिन जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि कितने टेररिस्ट मारे हैं और क्या क्या उनके नाम हैं, उस वक्त तक जो है हमको जो है हम पीस में नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि इससे पहले भी आपको पता ही है कि मसूद साहब जो है, इमरान मसूद, वो काफी खतरनाक बातें करते हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी के इतने टुकड़े मैं करूंगा कि नजर नहीं आएंगे, तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। अभी न्यू इंटरव्यू जो आया है उसमें उन्होंने कहा जी कि उड़ी और बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक था उसको भी आप मानते हैं कि नहीं, जो कि इंडियन मिलिट्री ने किया था इन रिटेलिएशन ऑफ पठानकोट और पुलवामा अटैक्स। तो इमरान मसूद साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने ये जो अटैक्स किए थे इसकी तो जग हंसाई हुई थी, सारी दुनिया इसके ऊपर हंसी थी, जिसमें कि इंडिया ने कहा था जी हमने बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हमने बर्बाद किए हैं, तो सारी दुनिया हम पे हंसी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कहा था कि इंडिया ने सिर्फ हमारे 3 कौए मारे हैं। तो इमरान मसूद साहब जो है वो आज बड़े नजर। पाकिस्तान के सिंगर एक्टर अली जफर जो है उन्होंने आज एक्स के ऊपर कहा जी कि मेरे घर के पास बहुत ही स्ट्रांग एक्सप्लोजन्स हुए थे और वो लोग जो कि बड़ा चीयर कर रहे हैं कि वॉर होना चाहिए और वायलेंस होना चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ना चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, थोड़ा अकल का नाखून ले लो आप, और ये वॉर जो होता है बहुत ही डेवस्टेटिंग होता है, बहुत सारे इनोसेंट बच्चे लोग फैमिलीज जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं वॉर के अंदर, तो वी नीड टू वेक अप, हमको जो है थिएट्रिकल्स की जरूरत नहीं है, पीस की जरूरत है, लाइफ बहुत प्रेशियस है और हर नेशन जो है वो सिक्योरिटी डिजर्व करती है। मैं सबको कहता हूं कि बैठो, बात करो, डायलॉग करो, स्टॉप दिस मैडनेस, दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ लाइफ जो है हमारे इस रीजन के पीस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप बातचीत से मसले खत्म करो। आतिफ असलम ने आज जनाब ऑनर किया है नुसरत फतेह अली खान का, जो बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग है सनुक कल चैन ना आवे, डिफरेंट तरीके से इसको जो है न्यू सीजन ऑफ वेलो साउंड स्टेशन जो है उसके ऊपर ये सॉन्ग जो था ये नुसरत साहब के ओरिजिनल सिंगिंग के साथ चलता है और उसमें आतिफ की जो मॉडर्न स्टाइल है वो ब्लेंड होती है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव मिक्स जो है इसको किया है बिलाल लाशारी ने। बिलाल लाशारी से आमिर तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? वेरी गुड, देख आमिर का दिमाग कितना आजकल तेज चल रहे हैं, एनका दा कमाल है, नवी एनका दा है जी। तो वो कहते हैं बिलाल लाशारी ने इसका बड़ा जबरदस्त इम्प्रेसिव मिक्स किया है, सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद प्रेज और वो सुन रहे थे इसको भी NFAK को भी लाइव, उन्होंने कहा जी वाह 3 लेजेंड्स जो है जब साथ आए हैं तभी इतना जबरदस्त काम हुआ है। ये जो ट्रैक है इट पेज होमेज टू पाकिस्तान रिच म्यूजिकल लेगेसी। जैकी चैन साहब जो हैं जनाब 17 इयर्स के हो गए हैं और 15 साल से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि ये जो कराटे किड यूनिवर्स था उसमें, तो अभी फिर से आगे है वापस कराटे किड लेजेंड्स जो आने वाली है, उसका एक प्रमोशनल जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें उन्होंने बात किया कि मैं जो है कभी भी अपने स्टंट्स किसी के ऊपर नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा अपने स्टंट्स करूंगा और मैं ये चीज चेंज नहीं होगी जब तक कि मैं रिटायर नहीं हो जाऊंगा और मैं कभी भी रिटायर नहीं होऊंगा। वो कहते हैं जी कि 64 ईयर से अगर मैं ये काम कर रहा हूं और मुझे कोई भी फिजिकल प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है तो फिर मैं करता ही रहूंगा, और बट फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट एंड यू हैव टू हैव अ मसल मेमोरी, यानी कि आपके मसल को याद रहना चाहिए कि आप इस तरह का काम करते हो। फाइव साइड्स हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर जो के यानी कि फाइव क्रिकेट टीम्स जो हैं वो अब दे आर वाइंग फॉर नेशनल विमेन्स T20 टूर्नामेंट टाइटल अकॉर्डिंग टू PCB. ये 18 डे का टूर्नामेंट जो है ये ऑलरेडी कराची में शुरू हो गया है. इसके अंदर चैलेंजर्स कॉन्करर्स इनविंसिबल स्टार्स एंड स्ट्राइकर्स जो हैं वो खेल रही हैं. पांच विमेन्स टीम्स और 22 मैचेस इसमें होते रहेंगे May 24 तक एट नेशनल बैंक स्टेडियम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची के ओवल ग्राउंड में. और ये जो टीम्स फिनिश करेगी सेकंड और थर्ड वो फेस ऑफ करेगी क्वालिफायर में ऑन May 22. विनर जो है वो फिर फेस ऑफ करेगा फाइनलिस्ट के साथ फाइनल में. 80 जो क्रिकेटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसका जो प्राइज मनी है वो 3 मिलियन रुपीज है. कैंप्स जो चैंपियंस होंगे उनको 1.5 मिलियन दिया जाएगा. रनर्स अप को 1 मिलियन. पाकिस्तान नेशनल टीम की जो कैप्टन है फातिमा सना वो लीड कर रही हैं कॉन्करर्स को. ओपनिंग बैटर गुल फिरोजा कैप्टन कर रही हैं स्ट्राइकर्स को. मुनीबा अली इनविंसिबल्स को. रमीन शमीम चैलेंजर्स को. सिद्रा अमीन स्टार्स को. और आज का जो मैच था स्ट्राइकर्स के बीच में था जो उन्होंने 7 विकेट से जीता अगेंस्ट इनविंसिबल्स. ऑप्टिंग टू बैट फर्स्ट इनविंसिबल्स मेड 134 for 7. स्ट्राइकर्स ने कंफर्टेबली ये टारगेट लिया 3 विकेट के लॉस के ऊपर विद 5 balls to spare. 27th मैच ऑफ PSL 10 बिटवीन पिशावर जलमी एंड कराची किंग्स जो कि आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला था उसको रीस्केड्यूल किया गया था क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद अटक के अंदर सब रेड अलर्ट था. PCB ने कहा कि हम रिवाइज करके डेट्स जो है वो हम अनाउंस करेंगे. डिसीजन जो है प्रिकॉशनरी मेजर था. हालांकि कुछ ऐसा सच खतरा नहीं था लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी अनवांटेड सर्कमस्टांसिस जो है हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स और प्लेयर्स और जो स्पेक्टेटर्स भी जो है उनकी जो सेफ्टी है वो हमारी प्रायोरिटी है. असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और फॉर्मर न्यूजीलैंड के जो हेड कोच है माइक हैसन मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडिडेट्स हो सकते हैं. इनको शॉर्ट किया जा सकता है फॉर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम्स हेड कोच रोल. अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जो कि PCB ने दिए हैं वो फटाफट ये परमानेंट हेड कोच का जो मसला है इसको जो है हल करने के लिए 4-member committee उन्होंने बनाया है विद CEO सुमेर अहमद सैयद बिलाल अफजर सिलेक्टर अजहर अली एंड फॉर्मर हेड कोच आकिब जावेद के साथ. कमेटी को कहा गया है कि आप अपना रिकमेंडेशंस जो है डालो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी को और फिर वो जो है इसमें से सिलेक्ट करेंगे. 6 candidates को शॉर्टलिस्ट किया गया था जिसमें से 4 foreigners थे इंक्लूडिंग हैसन और एक जो थे अजहर थे जो कि 2 locals जो थे उनमें से थे. एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट IPL. IPL का जो क्लैश था आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में एट धर्मशाला उसको भी रोक दिया गया था एट स्टेडियम फ्लड क्योंकि स्टेडियम के फ्लड लाइट्स डिम हो गए थे क्योंकि बहुत सारा पैनिक आ गया था और लोग भागते हुए देखे जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे सायरन बजने जो हैं वो शुरू हो गए थे. इंडियन मिलिट्री जो है उसने कंफर्म किया था कि हाँ बिल्कुल ये जो ऑन गोइंग आर्टिलरी शेलिंग हो रहे हैं और पाकिस्तान के जो अटैक्स हो रहे हैं LOC पे उसकी वजह से ये सायरन बजाए गए थे जिसमें कि लोग भागे और फिर मैच को हॉल्ट करना पड़ा.
जी बिल्कुल आज PSL का मैच जो है वो कैंसिल हो गया. बिल्कुल सही कहा आपने. और ये थी अब तक की गर्मा गर्म खबरें और आई होप कि आप लोगों को खबरें पसंद आई होंगी. अब टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे लियाकत मलिक साहब और भूली बिसरी यादें आपके लिए लेकर आएंगे. तो पहले एक टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं. हमारा नंबर 4166201778.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो. ट्रक जिड्डा दा भी चलाउने हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com QTL because we care.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 Kennedy Road ब्रैम्पटन 9058747171.
शॉपर्स, हो जाइए तैयार.
लीसास कॉस्मेटिक फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ।
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड्स।
बस आपको आना है लीसास कॉस्मेटिक्स 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401।
सेल इज फ्रॉम अप्रैल 26 टू मई 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सेलेंट मौका। विजिट लीसास कॉस्मेटिक्स .com।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 इयर्स ऑफ अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स इन द फील्ड। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000 905-607-5000।
वेलकम बैक तमाम सामाइन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शाजिया मलिक साहिबा। अब इंतजार लेते हैं क्योंकि लियाकत मलिक साहब जो हैं आ गए। तो शाह जी आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहें तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी। ठीक है तमाम सामीन, अब आपको लेकर चलते हैं भूली बिसरी यादों की तरफ। हम इजाजत लेते हैं